कहता जरूर है कि हम दुखी हैं, लेकिन असल में दुख एक है। जो एक बार इस बात का एहसास कर लेता है कि दुख है यहां पर संसार में, यहां दरख्तों के सायों में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। जो ये कह पाता है कि यहां तो जहां से भी सुख चाहते हैं वहीं से दुख निकलता मालूम पड़ता है, वो वास्तव में जान गया है कि दुख यहां दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन जिसे अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज में सुख नहीं मिला, शायद किसी और चीज में सुख मिलेगा, यहां सुख नहीं मिला, शायद कहीं और सुख मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी बना लीजिए, चाहे अपने देश में बना लीजिए, अपने शहर में या बाहर के देखिएगा, वो बनेगा क्योंकि वो बन सकता है। लेकिन इस बात का एहसास हमें नहीं हो पाता, हम तो सोचते हैं कि इस एक घर में सुख नहीं मिला, किसी और घर में सुख मिलेगा, इस एक जगह पर, अरे ये बहुत छोटी सी जगह है, शायद बॉम्बे में, कहीं और किसी और में सुख की खोज हमारी होती है, ये तो सबसे अधिक हमारे दुख का कारण बन जाता है। मान लो है अभी और यहां हम इसमें संतुष्ट नहीं है, फ्यूचर इन डे कहीं और कहीं और हमें वो दिखाई पड़ता है, हम यहां नहीं होते तो शायद सुखी होते, हमारे पास ये चीजें नहीं होती तो शायद सुखी होते, नहीं ऐसा है ही नहीं। हम दुख की तासीर ही समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली दुख है क्या। सबसे पहले तो ये फील करना पड़ेगा कि दुख है। नदी के किनारे पहुंच करके आप पानी पर लकीर खींचिएगा, कितनी देर में लिख जाएगी, कोई भी कह देगा कि इधर खींची उधर मिल जाएगी। आप तो रेती पर लकीर खींचिएगा, थोड़ी देर ठहरेगी, हवा चलेगी, वो भी मिट जाएगी। आप पत्थर पर लकीर खींचिएगा, कुछ और थोड़ी देर चलेगी, फिर पत्थर भी रेत रेत होकर के बिखर जाएगा, लकीर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहां दिखाई पड़ता है, पानी पर खींची लकीर का मिटना तो दिखाई पड़ता है, लेकिन चट्टान पर खींची लकीर कब मिटती है हम अपनी जिंदगी में देख ही नहीं पाते हैं। और ये सोच करके कि कभी नहीं मिटेगी, हम चट्टान पर भी लकीर खींचते हैं और सोचते हैं कि शाश्वत हो। हम छोटे छोटे भोगों को नष्ट होते देखते हैं तो फिर हम बड़े बड़े भोग भोग की सामग्री जुटा के रखते हैं, लेकिन वह शाश्वत होगी, लेकिन कहीं वो शाश्वत नहीं होती। और जो चीज शाश्वत नहीं है वो अंततः पीड़ा में लेकर के चली जाएगी, क्योंकि उसका अभाव हमें पीड़ा देकर के चला जाएगा। उसके सद्भाव में तो इस बात का सुख नहीं मिल पाएगा कि उसका सद्भाव रहा, बल्कि इस बात का दुख हो रहेगा कि किसी भी क्षण इसका सद्भाव हो सकता है, किसी भी क्षण इसका अभाव हो सकता है। ये पीड़ा हमें जो चीज सद्भाव में है वो भी देकर चली जाती है, उसके असद्भाव की पीड़ा तो होती है, लेकिन हम दुख की तासीर नहीं समझ पाते। बौद्ध दर्शन में तो एक ही चीज लिखी हुई है एक जगह, कि जो दुख को समझ जाता है वो संसार से पार हो जाता है। लेकिन संसार का दुख जिसे दुख लगे तब न कहने में तो हम किसी से भी कह दें, और वैसे भी कोई कहा कहता है कि मैं दुखी हूं, किसी से भी रास्ते चलते आप पूछ लो कैसा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम अपनी नानी हालत दूसरे को भी नहीं बताना चाहते, हम अपनी नानी हालत हम भी नहीं पहचानना चाहते, हम उसको कवर करना चाहते, उसको जानना चाहते, इग्नोर करना चाहते, हम वस्तु की वास्तविकता से पलायन करना चाहते हैं। दुख हमारे चारों तरफ फैला है, जहां हमने हाथ डाला वहां से कोई सुख नहीं मिला सिवाय दुख के। लेकिन हम हिम्मत करके ये नहीं कह पाते हैं कि हां हमें यहां हर चीज से दुख ही मिला, और जो एक बार ये कह सकेगा कि हां यहां पर मुझे दुख ही मिला, वो फिर उस दुख का उपाय काय को करेगा। दुख का कोई ना कोई एक बार स्वीकार हो जाए कि दुख है, तो फिर आदमी दुख के कारण खोजना शुरू कर देता है, वो भी बहुत आवश्यक है जानना। दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा। अगर रात सुबह उठे हैं और गर्दन में तकलीफ है तो संभव है कि रात सोते समय तकिया टेढ़ा हो गया होगा, या कि गर्दन ठीक से नहीं हुई होगी इसलिए दर्द है, कोई ना कोई कारण तो होगा। कोई डिजीज नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डायग्नोस कर दीजिए, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبان کر دیجیے گا, روپ تو کارن بتا دیجیے کہ بات کیا ہے. تو دکھ ہے تو دکھ کا کارن بھی ہونا چاہیے, لیکن اس بات کا احساس اسی کو ہو پاتا جو یہ مانے جو یہ فیل کرے کہ پیڑا ہے اسے, تب وہ دکھ کے کارن کھوجتا ہے. ہم سب لوگ, ہمیں کوئی بتا دے کہ دکھ کا کارن کیا ہے, دیکھو تو مزہ, ہم دکھی ہیں اور کوئی دوسرا بتا دے کہ دکھ کا کارن کیا ہے. ہم اشانت ہیں اور دوسرا کوئی شانتی کا اپائے بتائے اور یہ بتائے کہ تم اشانت کیسے کیسے ہو. جب ہم خود اشانتی کا اپائے اتپن کرتے ہیں تو کیا ہم ان اشانتی کے اپایوں سے بچ نہیں سکتے ہیں؟ ہمیں کارن بھی جاننا چاہیے کہ آخر کیا کارن ہے جس سے کہ میں دکھی ہوں, اور اگر کوئی کارن ہے تو پھر اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہوگا, کوئی ایک اپائے بھی ہوگا. تو دکھ کی نبرتی کا کارن بھی تو کوئی نہ, دکھ کی نبرتی کا اپائے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. تیسرا سخت اگر کوئی ہے تو دکھ کی نبرتی کا اپائے کھوج لینا. دکھ کا کارن ہے تو اس کو دور کرنے کا کارن بھی ہوگا, اور اتنے سے کام نہیں چلتا, کیونکہ ایک سچائی اور ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی سچا سکھ بھی ہے, اس کا امیجنیشن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کی کلپنا بھی ہمارے بھیتر ہونی چاہیے. اندھیرے سے ڈھک کر کے ہم جائیں گے کہاں, جب تک کہ ہمیں پرکاش کا احساس نہ ہو کہ پرکاش بھی کوئی چیز ہے, ورنہ اندھیرا چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہونے والا. جسے ایک بار یا تو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے بند کمرے میں اندھیرا ہے اور کہیں باہر بہت روشنی ہے, وہ بند کمرے میں سے باہر نکلنے کے لیے چھٹپٹائے گا. لیکن جسے ابھی اپنے بند کمرے کا اندھیرا بھی اندھیرا نہیں معلوم پڑتا, وہ روشنی کی کھوج میں کیسے نکلے گا؟ اور جسے یہ احساس نہیں کہ باہر کہیں روشنی ہے, وہ بھی روشنی کی کھوج میں, جسے اپنے آتم سوروپ کا بھان نہیں ہے, وہ ان ساری چیزوں کو ہی اپنی آتما مان کر کے اسی میں رنجا نام ہوتا رہتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, سارے پر پدارتھ جو کہ ہمارے نہیں ہیں ان میں رنجا نام ہو کر کے اس میں سکھ کھوجنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم پانی کو مت کر کے اس میں سے نومیت نکالنا چاہتے ہیں. سب جانتے ہیں, میں کوئی بہت نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف آپ کو ایک اشارہ کر دوں. آپ نے بہت سنا ہوگا, میرے بعد اور لوگ آئیں گے, وہ آپ کو یہی چیز بتائیں گے, اور میرے سے پہلے بھی لوگ آئے ہوں گے, ان میں بھی یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی. کب تک آپ سنتے رہیے, کبھی تو آپ اپنے بھیتر سے یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریے کہ یہاں دکھ ہے. اس بات کا احساس ہمیں بہت گہرے میں ہونا چاہیے, سنا سنا دکھ نہیں, ہمیں اس بات کی فیلنگ ہونا چاہیے کہ واسطو میں نے یہاں آج تک جو بھی پایا ہے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں پایا. تھوڑا سا چھن بھر کا جو احساس ہوا ہے سکھ کا, وہ بھی انتتا مجھے دکھ میں لے گیا, اور اس کا کوئی نہ کوئی کارن ہے جس کے لیے الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے کارن بتاتے ہیں. کبھی کال موت سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک استھتی نہیں ہے سماج میں, سامنے بات نہیں ہے, شوشن بہت ہے, یہی کارن ہے پیڑا کا. لیکن اتنا سا کارن نہیں ہے, کسی کیمسٹ اور ڈرگسٹ سے پوچھو, کسی سائیکولوجسٹ سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ دکھ کا کارن ہمارے مانسک وکار ہے. کسی کرم فلاسفی والے سے پوچھو, کسی کرم سدھانت والے سے پوچھو, وہ کہے گا پورن ارجت کیے گئے جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ذمہ دار. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے سوائے بھگوان مہاویر سوامی کے کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ہم سوئیں. ہم دوسرے پر تھوپ دیتے, ہم کرموں پر تھوپ دیتے کہ کرم ذمہ دار ہے, ہمارے بھیتر جو منوکار ہے وہ ذمہ دار ہے, جو یہ باہر چل رہا دکھائی پڑ رہا شوشن وہ ذمہ دار. اتنی ذمہ داری صرف ان سب چیزوں کی نہیں ہے, یہ بھی کارن جو ہم باہر کے کھوج لیتے ہیں وہ کارن بھی ہمارے دکھ کے کارن نہیں, انتتہ ہمارے پرمان ہمارے دکھ کے اور سکھ کے کارن ہے, اور ان پرمانوں کے کرتا اور بھوکتا اور سوامی ہم سوئیں ہیں. لیکن اس بات کا احساس ہمیں ہو کہاں پاتے, ہم دوسرے کے نقطے ڈال دیتے ہیں کارن, تو پھر اس کارن سے مکت ہونے کا کوئی اپائے بھی ہمیں نہیں معلوم پڑتا. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میرے پرمان ہی میرے پیڑا کے کارن ہے, تو اپائے تو ترنت ہے کہ ان پروانوں کو سنبھالو. اگر کرم کا ادے کارن ہے تب تو پھر کوئی مشکل, تب تو ہم بہت پراشرت ہیں, کرم کا ادے آئے گا ہمیں دکھ ہوگا اور ہم دکھ میں پہنچ جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارا وش ہی نہیں. اگر کوئی منو وکار اس کا کارن ہے تو منو وکار تو سطح اٹھتے ہیں اور ہمارے اندر آتے ہیں, پھر تو کوئی اپائے نہیں. اور اگر سماج میں شوشن ہے تو شوشن تو کبھی دور ہونے والا نہیں ہے, جو ان بیلنس ہے وہ بھی کبھی دور نہیں ہونے والا ہے, تب آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے. کیا کوئی اپائے نہیں ہے دکھ سے بچنے کا؟ اپائے ایک ہی ہے اصل میں, کیونکہ کارن اگر ایک ہے تو اپائے بھی एक ही है, कारण एक ही है कि मेरे आत्मा के परिणाम मुझे दुखी करते हैं, तो उपाय भी एक ही कि मैं अपने आत्मा के परिणामों को संभालूं। और जब मैं संभालता हूं अपने परिणामों को, तो मुझे जो दशा प्राप्त होती है वही तो मुक्ति की दशा है, वही तो आनंद की वास्तविक दशा है। लेकिन अपनी पीड़ा के कारणों को हम नहीं जान पाते हैं। मुझे तो वर्तमान में ये सब तो छोड़िएगा पीड़ा के कारण, मुझे तो तीन पीड़ा के कारण साफ साफ दिखाई देते हैं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मैं आप में अपने को भी शामिल कर रहा हूं। ये सारा उपदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी अपने से ये उपदेश कर रहा हूं। अगर मैं भी इसमें कहीं कोई कमजोर हूं तो अपने को सुधारूंगा। और आप भी उसी भाव दशा से सुनिएगा कि हमें अपने जीवन को निरंतर परिमार्जित करना है। दुख के और पीड़ा के तीन कारण जो मुझे दिखाई पड़ते हैं संसार में, पहला कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, हमारी एक दौड़, हमारी प्रतिस्पर्धा। निरंतर प्रतिस्पर्धा में जब से पैदा होता है कोई व्यक्ति, तब से प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। हम अपने बाबत, इन रिलेशन टू योर सेल्फ, अपने रिलेशन में कभी नहीं सोचते, इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरे के संबंध में हमेशा सोचते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस हमेशा दूसरे के सापेक्ष है। दूसरा इतना ज्ञानी है तो मुझे अपने अज्ञान का एहसास होने लगा, दूसरा इतना पैसा वाला तो हमें अपनी निर्भरता का एहसास होने पड़ता, दूसरे के पास दो अच्छे कपड़े हैं तो हमें अपने कपड़े फोटो मालूम पड़ने लगते हैं। हर समय कंपेयर है, अरे यहां तक हमने कंपेयर किया है, अपने बेटे को कॉम्पिटिशन में डाला है, प्रतिस्पर्धा में डाला है कि जब वो पैदा हुआ था, जब कुछ नहीं जानता था, तब भी हमने उसका वेट लेके ये कहा है कि बाजू वाले को 10 पॉइंट का हुआ था, हमारा तो 9 पॉइंट का पैदा। हमने वहां से कॉम्पिटिशन में डाला अपने बेटे को, हम क्या सिखा रहे हैं? हम कॉम्पिटिशन सिखा रहे हैं, हम प्रतिस्पर्धा में डालते चले जाते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते, दौड़ो, एक दौड़ है। बेटे से कहा जाता है कि तुम खेल में नहीं फर्स्ट, तुम पढ़ाई में नहीं फर्स्ट, तुम लड़ाई में नहीं फर्स्ट, तुम अगर लड़ो तब भी पहले आना चाहिए, तुम्हें पहले आना चाहिए। जहां भी दौड़ो, जिस तरफ से दौड़ो, उस तरफ से तुम्हें प्रथम आना चाहिए। और ये जो प्रथम आने की जो क्राइसिस है ना, ये आदमी को पीड़ा में डालती है, क्योंकि हजार डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल है पूरा का पूरा जीवन। किस किस दिशा में दौड़िएगा, जिस दिशा में दौड़िएगा, उस दिशा में अगर आपके प्रथम आने की कोशिश है तो कभी ना आ पाएंगे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं हर जगह आदमी को परेशानी में डालती हैं। प्रतिस्पर्धा निरंतर हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही प्रतिस्पर्धा, यह भी बहुत खतरनाक प्रतिस्पर्धा है। पूजा की प्रतिस्पर्धा, यह भी और ज्यादा खतरनाक प्रतिस्पर्धा। तपस्या की प्रतिस्पर्धा, और ज्यादा खतरनाक प्रतिस्पर्धा। मैं उनसे बड़ा त्यागी हूं, वाहरे त्याग। त्याग कॉम्पिटिशन के लिए किया था, तब तो फिर वो संसार को बढ़ाए। त्याग तो हमने अपने आप को कल्याण के लिए किया था, दूसरे से कंपेयर करने के लिए नहीं किया था। लेकिन आज हमारी हर चीज, आज हमारा हर सोच पूरा प्रतिस्पर्धा पर टिका हुआ है। हम अपने घर में तो जो कुछ करते हैं करते हैं, हम अपने धर्म के मामले में प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, कौन किससे ज्यादा बड़ा। लेकिन सब दूसरे के सहारे खड़े, और किसी का सहारा हो चाहे ना हो, तीर्थंकर भगवंतों का सहारा तो है। जो लोग खुद सहारे पर खड़े हैं वो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि हम उनसे बड़े हैं, वो उनसे बड़े। नहीं, संतोष इस तरह जीवन में नहीं आ सकता, सिवाय पीड़ा की कोई चीज नहीं आ सकती। एक बहुत बड़े साधु रहा करते थे, एक झोपड़ी बना करके जंगल से बाहर। उनको कभी किसी ने दुखी नहीं देखा, कभी उनके चेहरे पर कभी कोई शोक की छाया नहीं देखी। लोग उनके पास पहुंचे और उनसे एक बार पूछा कि आप कभी हम आपको दुखी नहीं देखते, ना कोई आपको दुख दे पाया, ना कोई आपको दुखी कर पाया। कितनी मुसीबतें आई लोगों के ऊपर जब लोग दुखी हुए, लेकिन हम आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखते। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु तुम नहीं जानते। बोले बताइए आपका गुरु कौन है? बोले ये जो दो सामने झोपड़ी के दो पेड़ लगे हैं वो मेरे गुरु हैं। अरे ये पेड़ और आपके गुरु? बोले हाँ, ये एक जो छोटा पेड़ है, ये जो एक बड़ा पेड़ है। मैं शाम को इन बाहर बैठ जाता हूं, اور ان کو لہراتے ہوئے دیکھتا ہوں. صبح بیٹھ جاتا ہوں, صبح بھی یہ لہراتے ہوئے ہیں. کبھی میں نے چھوٹے پیڑ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب سے یہ بڑا پیڑ میرے بازو میں اگ گیا ہے تب سے یہ میری ساری جگہوں کا پانی کھینچ لیتا ہے, مجھے بڑا نہیں ہونے دیتا. کبھی کسی بڑے پیڑ نے اس بات کا ہنکار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ تم اتنے چھوٹے رہو, ہم سے بڑے مت ہو جانا, ہم بڑے ہیں. یہ پیڑوں کو کبھی میں نے اس طرح کے جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کہ یہ پیڑ بڑا ہے اور یہ پیڑ چھوٹا ہے, اس طرح کے کمپٹیشن کرتے نہیں دیکھا, اور ان کو صرف لہراتے دیکھا ہے. اور میں نے ان سے سندیش بھی لیا ہے کہ جیون میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریاپت ہے, کیونکہ وہ ہمارا ہو سکتا ہے, دوسرے سے چھین کر اپنا نہیں بنایا جا سکتا, اور جو اپنا ہے وہ کوئی دوسرا چھین کے لے بھی نہیں جا سکتا. ہماری اپنی یوگتا کو کوئی مس نہیں کر سکتا, اور یوگتا کہیں باہر سے اڈاپٹ کر کے اپنے بھیتر ارجت نہیں کی جا سکتی, وہ تو ہم اپنے دوارا ہی اپنے کو اونچا اور نیچا کر پاتے ہیں. اپنے پرناموں کے دوارا ہم چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں چھوٹا بڑا نہیں کرتا ہے. یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو پرتیسپردھا شروع ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ پرتیسپردھا ہے, جب تک یہ دوڑ ہے سنسار کی, تب تک ہمارے جیون میں کوئی شانتی مل سکتی؟ آپ سوچئے, میں آپ کو اپنے وچار دے رہا ہوں, وہ آپ کے وچار ہوں یا آپ سے چاہ رہا ہوں. آپ میں نے بولا ہے اس لیے آپ سن کر کے مان مت لیجیے گا. آپ دور سے اپنے جیون میں جا کر کے شروع کریے گا, دیکھنا شروع کریے. دوسری چیز اور آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, پرتیسپردھا کے بعد پرتشٹھا کا سوال. پیڑا کا اگر کوئی دوسرا کارن ہے تو پرتشٹھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں آدمی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرتیسپردھا تو کرتا ہی ہے. اپنی پرتشٹھا کا بھی سوال, اپنے اسٹیٹس کا سوال. ان کی بٹیا کی شادی میں 5 لاکھ خرچ ہوئے تو تمہاری بٹیا کی شادی میں 6 لاکھ تو خرچ ہونا چاہیے, کیونکہ پرتشٹھا کا سوال. ان کا بیٹا کار میں گھومتا ہے رات, جب تک میرے گھر میں کار نہیں آ پائے گی, جب تک چین سے سو نہیں پاؤں گا, کیونکہ میری پرتشٹھا کا سوال. پرتشٹھا یوگ تو بڑھنے سے آتی ہے یا کہ چیزوں کے بڑھنے اور گھٹنے سے آتی ہے؟ مجھے آپ سے پوچھنا. اگر کسی چیز کے بڑھنے گھٹنے سے آتی ہے تب تو پھر بہت مزہ ہے, میرے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں. آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں کی وجہ سے آپ پرتشٹھت ہو گئے تو بہت اچھی چیز ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گیان سے بھی پرتشٹھا نہیں ہوتی. پرتشٹھا ہوتی ہے ہماری راگ دویش کی کمی سے. ہم سوئم اپنے آپ میں پرتشٹھت ہو جاتے ہیں. جو آتما میں پرتشٹھت ہے وہ ہر جگہ پرتشٹھت ہے, اور جو اپنے آتما میں پرتشٹھت نہیں ہے وہ چاہے کہیں بھی پرتشٹھت ہو جائے, اس کی پد پد پر بہو پد پد ملتے ہیں, پر سب دکھ پد آس پد ہیں, تیر سکھی نجی پد سکل گنوں کا آس پد. اپنا جو نج پد ہے اس کو پانے کی کسی کی چیشٹا نہیں ہے. پرائے پد جو کہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے, ان کو پانے کی, اس پرتشٹھا کو پانے کی جو دوسرے کے دو ٹکڑوں پر ٹکی ہوئی ہے, اس پرتشٹھا کو پانے کی کہ 4 لوگ باہی باہی کریں گے, وہ پرتشٹھا پانے کی. میری آتما جس نے مجھے باہ باہی دے گی, میرا بھگوان جس نے مجھے باہ باہی دے گا, وہ پرتشٹھا پانے کی کبھی ہم نے چیشٹی نہیں. جس میں 4 لوگ جو کہ اجانی ہیں, جو سم اپنے سے پرچت نہیں ہے, وہ میرے گن گائیں گے تو کیا وہ میرے گن گا سکیں گے؟ جنہیں اپنا پریچے نہیں ہے وہ میرا پریچے دے سکیں گے؟ لیکن کیا کریں, ہمارا کوئی پریچے دے دے, ہمارا کوئی جے بولے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے, ہم بھلے کیسے ہی ہوں چاہیے, کیا کریں. یہ بھی ہماری پیڑا کا ایک کارن ہے, ہم نہیں سمجھ پاتے, ہم کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑا جاتے ہیں. اور ایک تو بہت بہت مزاقیہ ٹائپ کی گھٹنا ہوئی تھی, میں آپ کو کیا کہوں پرتشٹھا کے بارے میں. ایک ویکتی جاتا تھا رستے سے اور اس کو 4 لوگوں نے پکڑ لیا ایک اندھیرے موڑ پر. تو جیسے پکڑا تو اس نے چھڑانے بڑھانے کی کوشش نہیں کی, اس نے اپنا پاکٹ جوڑ سے پکڑ لیا. تو وہ لوگ 4 لوگ تھک تھے, اور وہ بڑا آرٹسٹیکل تھا، بہت نقاشی دار اس میں خریدا تھا، بہت محنت سے ایک ایک روٹی کم تھا،
تھوڑی دیر سے
खेल खिलौने खरीद के लाए। तब तो खेल खिलौने भी बहुत स्टैंडर्ड के मिलने लगे हैं, उन दिनों की बात है जबकि खेल खिलौने माटी की बता करते, और वैसे भी खेल खिलौने सब माटी के युवा करते हैं क्योंकि सब टूट जाते हैं, चाहे आप कितने मजबूत से मजबूत बना लीजिएगा सब टूटने के लिए है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये भी तो खेल खिलौने ही है, कितने दिन खेलिएगा, 7 बरस खेल लीजिएगा, इसके साथ 100 बरस खेल लीजिएगा, इसके बाद तो ये टूट जाएगा, नियम से टूटेगा, आप भले कितने ही मानते रहिएगा ऐसे, लेकिन खिलौना नहीं मालूम, खिलौने खिलौने मालूम पड़ते हैं, माटी की तो बिल्कुल माटी की मालूम पड़ते हैं, ये किसी दिन माटी का मालूम पड़े उस दिन तो फिर जीवन में कुछ का कुछ और होगा, जैसा जी रहे हैं वैसा तो नहीं होगा, बहुत आसान जीवन होगा, लाइफ इज ए प्लेजेंट जर्नी, फिर हम कह पाएंगे कि जीवन एक बहुत सुखद यात्रा है और हमें सिवाय आनंद के यहां कुछ नहीं मिलता है, हम तो सिर्फ आनंद पाते रहते हैं, चीजें आती हैं चली जाती हैं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जीवन तो शाश्वत है, हम बढ़ते चले जाते हैं, और वहां से खरीद करके ला रहा था छोटे छोटे से गुड़िया खरीदी थी, छोटे छोटे से उसने खिलौने खरीदे थे और अपने गोद में छुपाए हुए 11 बरस का नरेन वापिस लौटता था रास्ते में, अचानक उसने देखा कि एक इक्के वाला एक टांगे वाला तेजी से टांगे हाथते ले जा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा अपने मां का हाथ छोड़ करके रास्ते पर दौड़ गया, और इसके पहले कि वो टांगे का पहिया उस छोटे से 3.5-4 साल के बच्चे के ऊपर से निकले, अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती, अगर वो अपने खिलौने को बचाते हैं तो उधर वो जो खिलौना जो किसी मां का खिलौना है वो चला जाएगा, लेकिन ये खिलौने से बड़ा वो खिलौना है, इस बात का एहसास हुआ, और 12-12 बरस के बच्चे ने जिसको अपने खिलौने से सबसे ज्यादा मोह होता है वहीं पर खिलौने पटक करके हाथ बड़ा करके उस बच्चे को खींच करके अपने लगा लिया, टांगे वाला निकल गया लेकिन बेटा उसके हाथ में था, उसके माता पिता के हाथ में, और ये भी नहीं कहा कि मैं किसका बेटा हूं पर मैंने इसे बचा, अपने टूटे फूटे खिलौने बटोर कर घर की तरफ बड़े नरेन, और घर पहुंचे वो दोनों माता पिता अपने बेटे को निगम के पीछे पीछे को देखें किसका बेटा है, उसके पिता को धन्यवाद तो दे, और जाकर के जैसे ही मां के सामने पहुंचे तो टूटे हुए खिलौने थे और आंख में आंसू थे, मां तो यही समझी कि मेरे बेटे के खिलौने टूट गए हैं, पता नहीं कहां गिर गया होगा, इसलिए उसके सिर पर हाथ फेंकी जाती थी और नरेन की आंख में आंसू थे, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि बेटा क्यों रो रहे हैं, और जब वो दोनों लोग आए जिनके हाथ में उनका बेटा था, उन्होंने कहा कि आप मां हैं और इसकी मां तो आपको धन्यवाद देने आए हैं, आज आपके बेटे ने हमारे बेटे की जान बचा ली, अपने खिलौने टूट जाने दिए, तब उतने बड़े सारे बेटे को अपनी गोद में लेकर के उनकी मां 5 मिनट तक नाचती फिरी थी कि मुझे तुझे बन जन्म देना सार्थक हो गया, तूने अपनी चेतना की रक्षा, तूने मिट्टी की मिट्टी को टूट ही जाना था, तूने मिट्टी को ना पकड़ करके आज चेतना का सम्मान किया है, आज तूने अपनी आत्मा का अगर ये तू जीवन भर करता रहेगा तो मेरी मां होना धन हो जाएगा, क्या ऐसा कोई मां है, कोई ऐसी पिता है जो अपने चेतना की रक्षा का संदेश देता है अपने बेटे को, जो तर पदार्थों को संभालने का संदेश तो देते ही रहता है, आप सोचिएगा और अपने जीवन में इन चीजों को प्रकट करिएगा, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास आचरण है, आपके पास बुद्धि है, बस उसका उपयोग भर करिएगा, मिसयूज मत करिएगा, सदुपयोग करिएगा तो आप स्वयं सुखी हो जाएंगे, मैं तो आपको सिर्फ उपाय बता सकता हूं, मैं तो आपको सिर्फ इशारा कर सकता हूं, लेकिन संभालना तो आपको पड़ेगा, मैं आपके लिए चलूंगा नहीं तो नहीं पहुंचूंगा, आप चलेंगे तो आप पहुंचेंगे, आप चलना शुरू करिएगा, भले किसी के साथ चलिए, साथ ही चलना पड़ेगा, सच्चे देव गुरु शास्त्र के साथ चलना पड़ेगा, एक एक कदम रखना पड़ेगा, साहस करिएगा, प्रतिस्पर्धा छोड़िएगा, प्रदर्शन छोड़िएगा, प्रतिष्ठा का छोड़िएगा, और भगवान से एक बार, और भगवान से अपने आत्मा से एक बार लगाव करना सीखेगा, प्रीति करना सीखेगा, संसार में वही जहां अभी तक पूरा नहीं है वहीं से सुख मिलने लगेगा, ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने आप तक पहुंचाया, मेरे साथ आप और थोड़ा सा आप मेरे साथ नमोकार करें, हम सब एक नेक होकर के इस बात के लिए आज नमोकार करेंगे कि हमारे भीतर भावनाएं पवित्र हों, हम अपने परिणामों में निर्मलता लाएं और अपनी आत्मा का सम्मान करें, जहां जहां आत्मा है वहां वहां हम उस सब आत्माओं का सम्मान करें और अपने आत्म सम्मान को प्रमुखता दें, बाकी सब चीजें तो आज है कल नहीं रहेंगी, ऐसी भावना के साथ मेरे साथ करो।
Yeah.